आयान ने मैसेज करके आरव को फैज़ की हेल्थ अपडेट दे दी थी और साथ ही उसने ये भी बता दिया था कि छवि सिंघानिया उस मामले में इन्वॉल्व हो रही है। आरव ने जवाब में उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा। आयान को हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम बीत गया था। वो अपने केबिन में थककर परेशान बैठा था। आयान काफ़ी थक गया था, लेकिन फिर भी वो घर नहीं जा सकता था। उसके सामने कॉफ़ी पड़ी थी, जिसे पीकर वो अपनी नींद उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अगर इससे ज़्यादा कॉफ़ी पी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। हद है यार भाई, आप अपने मामले खुद नहीं संभाल सकते क्या? मिस्टर कपूर भी बार बार पूछ रहे हैं कि मैं घर क्यों नहीं जा रहा। कल मेरी सर्जरी भी है, ऊपर से आप आयु को हेल्प के लिए भेज नहीं है, मैं अकेला कितना कुछ संभालूं? आयान ने चिढ़ते हुए कहा। आयान ने टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल उठाया ही था कि उसके पास साक्षी का मैसेज आया। मैसेज देखकर हैरानी से उसकी आँखें बड़ी हो गईं। मैसेज पढ़ते हुए आयान आँखें बड़ी करके बोला, साक्षी मुझसे मिलने की बात कर रही है? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? ये तो उस दिन से मुझसे नाराज़ हैं और अब मिलने की बात कर रही हैं। कॉल करके पूछना होगा। वहीं दूसरी तरफ साक्षी घर पर अकेली थी। मंथन किसी मीटिंग की वजह से बाहर गया हुआ था। उसका सारा काम हो चुका था तो वो बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी अयान के ख्याल चल रहे थे। दिल ही दिल में वो भी उसे पसंद करने लगी थी। इतने सालों में पहली बार उसे किसी का दिल साफ और सच्चा महसूस हुआ था। पहली बार साक्षी को ऐसा लगा था कि कोई इंसान ऐसा है जो उसके पास्ट को एक्सेप्ट करके उसके साथ सच में आगे बढ़ सकता है। अयान काफ़ी अच्छा लड़का है, तो क्या वो मेरे पास्ट को एक्सेप्ट करके मेरे साथ आगे बढ़ना चाहेगा? साक्षी ने खुद से कहा। अगले ही पल उसके ख्याल बदल गए और उसने उतरे हुए चेहरे के साथ कहा, लेकिन वो क्यों मेरे साथ आगे बढ़ना चाहेगा? उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैंने गुस्से में उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव भी किया था। मैसेज करके मिलने को बोलती हूँ, फिर सॉरी कह दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मैसेज तो कर ही देती हूँ। काफ़ी सोच विचार करने के बाद साक्षी ने आयान को मैसेज कर ही दिया था। वही मैसेज पढ़ने के बाद जब आयान ने कॉल किया तो साक्षी फिर उलझन में थी कि वो कॉल रिसीव करे या नहीं। साक्षी ने कुछ पल मोबाइल स्क्रीन को देखा और कहा, हद दे यार, मैसेज में भी तो जवाब दे सकता था। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं कॉल पर कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूं? बोलते हुए साक्षी ने अजीब सा मुंह बनाया और कॉल रिसीव किया। साक्षी के कॉल पिक करते ही आयान ने जल्दी से कहा, साक्षी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप मुझसे मिलने की बात कर रही हैं। मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सच में आप मुझे मिलना चाहती हैं ना? मेरे फ़ोन से मैसेज आया है तो मैंने ही किया होगा ना आयान? साक्षी ने धीरे से जवाब दिया। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो कहाँ चलना है? साक्षी को मना करते हुए आयान को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर आरव का काम भी ज़रूरी था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई एम सो सॉरी, मैं आज बहुत बिजी हूँ और चाहकर भी हॉस्पिटल से नहीं जा सकता। मुझे इस वक्त इतनी नींद आ रही है कि कहीं पर बेड मिल जाए तो सबसे पहले अपनी नींद पूरी करूँगा, लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल से जाने को नहीं मिलेगा। क्या हम कल प्लान बना सकते हैं? इसका मतलब आरव बिल्कुल सही था, साक्षी ने सिर हिलाकर कहा। किस बात को लेकर वो सही थे? आयान ने हैरानी से पूछा। साक्षी ने जवाब में कहा, यही कि तुम्हारे साथ आगे बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे टाइम नहीं दे पाओगे। अनजाने में साक्षी के मुंह से क्या निकल गया ये उसे बोलने के बाद एहसास हुआ। वहीं साक्षी की बात सुनकर आयान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब आप मेरे साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रही हैं? हे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आरव ने क्या कहा था, साक्षी ने बात को कवर करते हुए कहा। इससे पहले कि आयान उसे कुछ भी पूछता, साक्षी जल्दी से बोली, ठीक है फिर, मैं बाद में बात करती हूँ, वैसे भी तुम बिजी हो। साक्षी कॉल कट करती उससे पहले आयान जल्दी से बोला, अरे नहीं, कॉल कट मत कीजिएगा, मैं बिजी नहीं हुई हूँ, बस हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ से निकल नहीं सकता। क्या आप मेरे लिए हॉस्पिटल आ सकती है प्लीज़? आयान काफ़ी प्लीडिंग वे में बात कर रहा था, तो साक्षी ने भी तुरंत हाँ कह दी और कॉल कट कर दिया। साक्षी के हाँ कहने पर आयान खुशी से झूम पड़ा। यस यस, फाइनली साक्षी मेरे बारे में सोच रही है, इसका मतलब मैं उन्हें अच्छा लगता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, आयु से शादी करने के अलावा आपने अपनी ज़िंदगी का दूसरा अच्छा काम किया है। आयान अपने हाथ हवा में लहराते हुए बोला और फिर साक्षी के आने का वेट करने लगा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। आरव ने आज रात को आयु को घर आने के लिए मना किया था, इसलिए वो जानबूझकर खुराना इंडस्ट्रीज में पुरानी फाइलों को खोलकर बैठा था। ऊपर से आयु ने पूरे दिन में उसे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया था, इस वजह से वो और नाराज हो गया था। कबीर उसके साथ काम कर रहा था और पुरानी फाइलों पर काम करते हुए उसे इरिटेशन फील हो रही थी। वो चिढ़ते हुए बोला, मुझे भूख लगी है और नींद भी आ रही है, मैं आपके साथ पुरानी फाइलों पर काम नहीं कर सकता, जो कि इम्पॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, तो घर चले जाओ, मैंने कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें यहाँ बिठा रखा है? मेरे बारे में कोई पूछे तो बोल देना कि मैं आज रात को घर नहीं आऊँगा, अब तो मैं कल सुबह ही घर पर कदम रखूँगा, आरव ने सिर हिलाकर कहा। आरव को वहाँ अकेले छोड़कर कबीर कभी नहीं जाता, ये बात वो भी अच्छे से जानता था। कबीर ने आरव की तरफ देखकर कहा,
आपको पता है ना कि मैं आपको छोड़कर अकेले घर नहीं जाऊंगा। आप अपने रूम में मत जाना, घर तो जा ही सकते हो। आरव ने कबीर की बात पर हामी भरी और कुछ पल के लिए सोचते हुए कहा, तुम्हारी बात भी सही है, पर मेरे पास एक और आइडिया है। मिस्टर राघवानी से मीटिंग करने जाना था, मैं वहां चला जाता हूँ और तुम घर पर जाकर सच बोल देना। तुम्हें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा और हम दोनों का काम भी हो जाएगा। ठीक है, मैं मिस्टर राघवानी से बात करके मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ, लेकिन मीटिंग के बाद आप कहाँ जाओगे? फिर तो आपको घर आना ही पड़ेगा, कबीर ने जवाब दिया। आरव से बात करते हुए उसने मिस्टर राघवानी को मैसेज करके अगले एक घंटे में मीटिंग अरेंज कर भी दी थी। उसका मैं खुद देख लूंगा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मेरे हर मोमेंट की खबर रखोगे। जिसे रखनी चाहिए वो भी घर पर बेफिक्र होकर बैठी है, तो तुम भी मेरी परवाह करना छोड़ दो, आरव ने मुंह बनाकर कहा। कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो दोनों वहां से साथ में निकल गए। आरव की गाड़ी होटल सनशाइन में जाकर रुकी तो वहीं कबीर घर जा चुका था। मीटिंग ऊपर के फ्लोर के प्राइवेट रूम में रखी गई थी। वहां पहुंचते ही आरव ने रायशा को दो आदमियों के साथ देखा। हालांकि वो उसे ना तो अपनी बहन मानता था और ना ही उससे कभी उसकी बात हुई थी। रायशा बॉलीवुड में काम करने लगी थी, इसलिए अक्सर देर रात तक उसकी मीटिंग एक्टर प्रोड्यूसर से चलती ही रहती थी। आज भी वो इसी तरह के किसी मॉडलिंग असाइनमेंट की मीटिंग के लिए आई हुई थी। उसने बिल्कुल किसी मॉडल की तरह कपड़े पहने थे, ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस जो काफी बोल्ड थी। आरव ने उसकी तरफ देखकर गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर सार्कास्टिक वे में सिर हिला दिया। रायशा की शक्ल काफी हद तक छवि से मिलती थी, इस वजह से आरव को वो वैसे भी नहीं पसंद थी। वहीं रायशा ने जब आरव को देखा तो उसकी तरफ हल्की सी स्माइल पास की, जिसका आरव ने कोई जवाब नहीं दिया।
वो लोग रूम में मीटिंग के लिए जा ही रहे थे कि तभी एक तीसरा आदमी भी आया। उसे देखकर आरव ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, द ग्रेट छवि सिंघानिया ने कभी मेरी केयर तो नहीं की, लेकिन कम से कम अपनी बेटी की तो कर ही सकती है। पता नहीं कैसे अजीब लोगों से मिल रही है। आरव ने फिर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मीटिंग के लिए चला गया। वहीं रायशा, जिसके साथ मीटिंग करने के लिए आई थी और जिसे आरव ने देखकर मुंह बनाया था, वो आदमी ग्लैमर वर्ल्ड में काफी फेमस था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। वो आदमी नई लड़कियों को काम देने के बहाने उनका फायदा उठाने की कोशिश करता था। आज भी वो आदमी कुछ इसी तरह के इरादे से यहाँ पर आया था। रायशा उसके साथ मीटिंग रूम में पहुंच चुकी थी, जहां सबसे पहले उन्होंने उसे ड्रिंक ऑफर की। रायशा ने देखा कि वो एक सॉफ्ट ड्रिंक थी जो स्पेशली उसके लिए ऑर्डर की गई थी। बाकी उन लोगों ने अपने लिए हार्ड ड्रिंक मंगाई थी, इसलिए उसने बिना किसी झिझक उसे ले लिया। वो आदमी रायशा को अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, आई मस्ट से रायशा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और देखना बहुत आगे तक जाओगी। जिस किसी भी लड़की ने मेरी मॉडलिंग कंपनी से अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की है, आज वो आसमान पर है, और देखना तुम भी जल्दी कामयाबी की सभी ऊंचाइयों को छुओगी। रायशा ने मुस्कुराकर जवाब में उसे थैंक्स कहा। कुछ ही देर में उसे सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आ रहा था, वो उन तीनों की बातों की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। वहीं रायशा को उसके सिर पर हाथ लगाते देखकर उन तीनों के फेस पर ईविल स्माइल थी। वो जिस इरादे से वहां आए थे वो पूरा हो गया था। हाँ, स्टार तो बनेगी, लेकिन किसी और ही इंडस्ट्री की। चल जल्दी से काम पर लग, लड़की के कपड़े निकाल और कैमरा तैयार कर, उस आदमी ने अपने साथियों से कहा। ओके, आज के लिए इतना ही। आप कहानी का पार्ट पढ़ते हो तो प्लीज समीक्षा किया करो, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देखकर। बाकी पढ़ते रहिए। सॉरी कभी कभार चैप्टर डालने में देर हो जाती है, लेकिन आगे से जल्दी अपलोड करूंगी। आपके लिए एक और नई कहानी का प्रोमो, अभी सिर्फ प्रोमो डाल रही हूँ क्योंकि कहानी कल तक लाइव होगी। प्लीज प्रोमो पढ़कर कहानी पर भी अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। स्टोरी का टाइटल द रिप्लेस्ड ब्राइड है, प्लीज हैव अ लुक। जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में शादी का समारोह चल रहा था। पैलेस की भव्यता से पता लगाया जा सकता था कि ये शादी कोई आम शादी नहीं थी। शादी का फंक्शन प्राइवेट था और बाहर मीडिया वालों की भीड़ दूल्हा दुल्हन की एक झलक के लिए बेकार थे। अंदर फेरों की रस्में चल रही थी। वहां मौजूद सभी के चेहरे की खुशी से पता चल रहा था कि सभी उस शादी से बहुत खुश थे। तभी पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ा और फिर दूल्हे से कहा, अब आप कन्या का घूंघट उठाकर उसे सिंदूर दान कीजिए। उससे पहले भगवान के सामने अपनी खुशी और मंगल जीवन की प्रार्थना कीजिए। लड़के ने हाथ जोड़े और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, तो वहीं उसके पास एक लंबे घूंघट में बैठी लड़की मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कहाँ हो तुम आज? यहाँ फेरों में मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए था। अगर इन्हें पता चल गया कि दुल्हन के जोड़े में तुम्हारे बजाय मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो हंगामा मच जाएगा। तुमने तो कहा था कि फेरे होने तक तुम आ जाओगी, पर तुम अब तक आई क्यों नहीं? लड़के ने हवन कुंड के आगे हाथ जोड़े और फिर लड़की का घूंघट उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उधर घूंघट के अंदर बैठी लड़की डर से कांप रही थी, क्योंकि अगले ही पल उसका राज खुलने वाला था।